ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख बिंदुओं और महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक स्कंद रंजन तयाल और पत्रकार केवी प्रसाद।
आज भारत की अध्यक्षता में 23वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का राजनीतिक संघ का बैठक समापन हुआ। तयाल साहब, यूं तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये और काफी सालों से तैयारी चलती रहती है इसकी, लगातार 23वां है लेकिन भारत का अपना इसमें भागीदारी 7-8 साल से है, क्योंकि 2017 में हम फॉर्मली एडमिट हुए थे और उसके बाद से 18 से लगातार हमारी इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि जो इसकी जो महत्वपूर्णता है, खासकर कहा जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बीच में जिस तरह का एक वातावरण तैयार करने की बात है, तो उसके तरफ थोड़ा आप बता पाए।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 2000 में और उसके बाद जिस तरह से इसका कार्य आगे बढ़ा, इसका फोकस मध्य एशिया पर है, सेंट्रल एशिया पर है और हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति कि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो शुरू से ही भारत का इसमें इंटरेस्ट रहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग किया जाए। हमने ऑब्जर्वर के रूप में पहले वहां उनके साथ भागीदारी की और फिर पूरे मेंबर के रूप में अब हम उसके सदस्य हैं। इस समय 8 सदस्य हैं, 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, तुर्कमेनिस्तान नहीं है मेंबर, और फिर चाइना और रशिया जो शुरू से ही थे, और फिर भारत और पाकिस्तान। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कार्य किया है, कुछ लोगों का ये मानना है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बहुत इशू होते हैं पर कार्य जमीन पर शायद उतना नहीं है। उस संदर्भ में भारत ने इसको एक नई दिशा देने का प्रयास किया है अपनी अध्यक्षता में, और जैसा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत वेलकम भाषण में बहुत क्लियरली कहा कि शुरू से ही फोकस रखा जाए सिक्योर, उन्होंने एक टर्म बताया जैसे सिक्योरिटी, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और सी से कनेक्टिविटी, यूनिटी और मुख्य है रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो हम देख रहे हैं चीन जैसे कर रहा है, और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की फोकस इन पर रखा जाए, और इस दिशा में बहुत कार्य भारत की अध्यक्षता में हुआ है।
पहल साहब, जैसे आपने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम इसको एक नई दिशा भी दें, और साथ ही साथ विदेश सचिव ने भी अपने जो वक्तव्य दिया था कि चीन की थी, उसमें भी उन्होंने एक बात रखा है कि भारत की तरफ से 2 खास मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई और उसमें वर्किंग ग्रुप भी तैयारी हो रही है। जिस तरह से एक तो स्टार्टअप और इनोवेशन पर, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहल की और आज कई सारे यूनिकॉर्न बने हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई नई तरह की दिशा हो इस तरह में, और साथ ही साथ जिस तरह से और जो अन्य भारत ने कोशिश की है कि इसका विस्तार हो और माध्यमों से, जैसे कि सामाजिक कल्चर हो, फिल्म हो, और हमारे जो टूरिज्म के ऊपर हो, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारे जो पद्धति है पुरानी उनके ऊपर भी एक तरह से फोकस रखा है। तो ये एक नई दिशा, जो कि जो आपने कहा कि कई सारे दस्तावेज तो बनते हैं लेकिन कई बार ठोस कार्यक्रम उस संदर्भ में नहीं हो पा रहे जिस संदर्भ में तैयारी होनी चाहिए थी और वो नहीं पा रही।
जी, जैसा विदेश सचिव ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि भारत का ये प्रयास रहा, 140 मीटिंग्स हुई कॉन्फ्रेंस लेवल पे, 14 मीटिंग हुई मिनिस्टर लेवल पर, कि एससीओ का जो भी कार्यक्रम है, जो भी काम होता है, वो केवल गवर्नमेंट्स तक ही सीमित ना रहे और वो जनता तक भी पहुंचे। और इस दिशा में जो भारत ने टूरिज्म पर मीटिंग्स की, कल्चर पर मीटिंग्स की, एक देखिए कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज है, इस्लाम के आने से पहले पूरा मध्य एशिया बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान का भी काफी हिस्सा बुद्धिस्ट था, तो उस दिशा में भी एक नया आयाम दिया। और जो भारत का है एक सोचना कि भविष्य की तरफ देखें और भविष्य में जो हमारे युवक हैं उनको कैसे नए सोर्सेज काम के और व्यापार के दिए जाए, और उस तरह से एक नया स्पेशल वर्किंग ग्रुप बना है स्टार्टअप्स पर, ये भारत का एक तरफ से इनिशिएटिव था। तो 2 नए मैकेनिज्म बने हैं, एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स, और उस पर भारत पहले ही 2 मीटिंग्स कर चुका है स्टार्टअप लोगों को साथ लाने में, और दूसरा एक्सपर्ट लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि जो भी देश इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं वो सब बड़े प्राचीन देश हैं, बहुत प्राचीन सभ्यता है इनकी, और चाहे वो भारत हो, चीन हो और सेंट्रल एशिया हो, सबका एक पुराना जो प्राकृतिक चिकित्सा का एक अनुभव रहा है वो लुप्त नहीं हो जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर शोध होना चाहिए, और हम सब देख ही रहे हैं एलोपैथिक और उस सबसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, तो उस दिशा में भी भारत ने एक पहल की है।
डॉक्टर साहब, एक चीज हमेशा जो खटकती है और जिसका बारे में आपने शुरू में भी जिक्र किया जो कि सिक्योर के अंदर मौजूद है, वो ये है कि जो रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसमें चीन की तरफ से हमेशा ये प्रस्तावना रहती है कि भाई जो वो PRI इसका जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें सब देश जुड़े, लेकिन भारत की शुरू से ही इस पे आपत्ति रही, तो ऐसे मुद्दों को लेकर क्या हो सकता है आगे?
देखिए, ऐसे मुद्दों पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुछ होना मुश्किल है, क्योंकि बाकी सब जो सदस्य हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं और काफी उत्साह से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और उससे पहले भी जो डिक्लेरेशन होते हैं उसमें भारत का नाम नहीं आता, बाकी सब देशों का नाम आता है कि उन्होंने इस इनिशिएटिव का स्वागत किया। और जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल तो बहुत बड़ा है, चाइना जिस तरह से भारत का साउथ चाइना सी वहां पर सब तरह से एक विस्तारवादी नीति अपना रहा है, पर मैं समझता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उससे डील करना शायद संभव भी नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र तो किया पर जोर देखिए उन्होंने आतंकवाद पर दिया। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा बिल्कुल क्लियरली कि आतंकवाद एक सेंट्रल ईस्ट SCO के चार्टर नंबर फर्स्ट पैरा में टेररिज्म का जिक्र है। प्रधानमंत्री ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की और ये भी कहा कि दोहरे मापदंड देश ना अपनाए। ये पूरा एक चीन की तरफ इशारा था जिन्होंने बार बार यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है उसमें नोन जो बहुत ही माने हुए आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, छुपे हुए हैं या जेल में, उनके भी खिलाफ उनको लिस्ट में लाने से बार बार वो उसके खिलाफ वीटो करता है, तो उस पर भी जिक्र किया। और उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग का भी जिक्र किया कि किसी भी देश से आतंकवादियों को ना तो पनाह मिले, ना किसी तरह की डिप्लोमेटिक अम्ब्रेला मिले और ना उनको कोई फंड मिले।
साहिल सर, जिसका आपने जिक्र किया जो टेररिज्म, खासकर प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बात उठाई और आर्टिकल 1 के जो ये है कि जो एक तरह से इसके पीछे अगर हम जाए तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और खासकर चीन के कुछ प्रांतों में उनको फिक्र था कि भाई वहां पे जो अलगाववाद या उग्रवाद पनप रहा है उस वक्त, और इसके तहत एक मैकेनिज्म भी बनाया गया था रैट्स जिसे कहते हैं जो ताशकंद में मौजूद है, लेकिन वो एक कागजी कार्रवाई होती है या उसमें कुछ ऐसा निकल सकता है? क्योंकि जैसे आपने साफ कहा कि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे हैं शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं और भारत दोनों तरफ से जानता है कि किस तरह से वो इनसे जूझ रहे हैं, तो ऐसे में ये रैट्स का और इसका कोई विडंबना लगती है इसमें?
रैट्स अपना काम कर रहा है, भारत ने भी उसके साथ काफी सहयोग किया है, भारत का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अब रैट्स में है और उसको इस तरह देखा गया है कि हर देश जो भी आतंकवादियों के बारे में कुछ सूचना है, उनकी फाइनेंसिंग के बारे में, फंडिंग के बारे में, उनके नेटवर्क के बारे में, तो वो वहां पर दे। पर मैं नहीं समझता, कम से कम पब्लिक नॉलेज में ऐसा नहीं है कि रेड्स की जो भी पिछले 15 साल में कार्रवाई हुई है उससे कोई आतंकवाद को रोकने में या उसको लड़ने में उसके खिलाफ कोई खास समर्थन या कुछ कामयाबी मिली है। और जैसा आपने कहा कि टेररिज्म आतंकवाद का गढ़ तो अफगानिस्तान पाकिस्तान है और उसको कहीं ना कहीं से कुछ प्रोटेक्शन चाइना दे रहा है और ये बड़ी विडंबना है क्योंकि चाइना शिंजियांग में कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और ये सब आतंकवादी संस्थाएं कहीं ना कहीं मिली हुई हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में इनको शरण मिली हुई है, तब भी चीन पाकिस्तान को हमेशा बचाता है किसी भी तरह के पनिशमेंट से, या तो उनके अपने बायोलेटरल रिलेशन है जो एक वास्तविकता है और हमें उसको अपनी नजर में रखना चाहिए।
लेकिन अगर साथ में जो आपने एक बात कही अफगानिस्तान की, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में इसका उजागर किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ 2021 में उसके बावजूद भारत इस तरह से मानवीय वहां पे सहाय प्रस्ताव पहुंचा रहा है, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं उसको अभी भी देखना है और SCO को एज अ ग्रुप इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए।
SCO के अंदर एक अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप है और वो अफगानिस्तान से कैसे सब SCO के मेंबर्स एक साथ इस तरह की रणनीति बनाएं, एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज करें कि किस तरह अफगानिस्तान को शांतिपूर्ण बनाया जाए, नंबर एक, और कम से कम जैसा भी है कि वो दूसरे देशों पर जो आतंकवादी हैं या रेडिकलाइजेशन है उसकी बेस वहां न बने। पर अभी एक दो साल में हमने देखा कि रशिया ने एक नया ग्रुप बना लिया है, रशिया प्लस 6, और उसमें रशिया के जो अफगानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको रखा है। तो अगर इसको बहुत ठंडी नजर से देखा जाए तो शायद अफगानिस्तान के साथ जो भी भविष्य में रिलेशनशिप होगी उसका क्या रूप निकलेगा वो SCO के माध्यम से नहीं निकलेगा, शायद जो रशिया और ये 6 देशों का ग्रुप बना है शायद उसके माध्यम से निकले। देखिए ये भी एक वास्तविकता है और हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और देखते रहना चाहिए। देखिए ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो शुरू में जिन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी वो 4 सेंट्रल एशियन देश थे और रशिया और चाइना, और सबसे बड़ा इनिशिएटिव चाइना से आया था इसीलिए इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। पर अब पिछले 2 वर्षों में चीन ने एक अपना समिट लेवल मीटिंग शुरू कर दी है 5 सेंट्रल एशियन देशों के साथ, और अभी 1 महीने पहले उसकी बहुत बड़ी मीटिंग चीन में हुई, और वो कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि शायद कुछ देश, चाहे चीन हो रशिया हो, वो मध्य एशिया को डायरेक्टली देखना चाहते हैं, उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं, उनके साथ जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, और शायद SCO के माध्यम से नहीं। तो इसको भी हमें बहुत ध्यान से इसको देखना है। भारत का अपना एक इंडिया सेंट्रल एशिया ग्रुप है, इनिशिएटिव है, तो हम इसमें पीछे बिल्कुल नहीं है, हम भी बहुत आगे हैं इसमें। कहीं ना कहीं शायद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस मुझे लग रहा है आगे भविष्य में शायद इतनी न रहे जितनी अभी तक है।
पहल साहब, इसका जो प्रासंगिकता क्या रहेगी आगे जाकर, जिस तरह से नई नई चीजें उभर के आ रही है, तो आज एक और घटनाक्रम में कहें तो ईरान को सदस्यता मिली और ईरान को SCO का नवा मेंबर रखा गया।
मैं समझता हूँ कि ईरान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आना एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएं तो ईरान जो पर्शिया था उसका पूरे मध्य एशिया पे एक सांस्कृतिक प्रभाव बहुत था, और जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इनकी अपनी कोई लिखित भाषा नहीं थी, बोलने की भाषाएं थी, और उनके कई जगह जैसे मुगल कोर्ट में भी पर्शियन का इस्तेमाल होता था। दूसरी चीज, ये कनेक्टिविटी में जो भारत, हम जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बीच में सांप की तरह बैठा हुआ है और भारत की कनेक्टिविटी मध्य एशिया से नहीं होने देता, उसके बाद बीच में अफगानिस्तान भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता कि भारत से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मध्य एशिया की इस रास्ते से होगी। तो रास्ता ईरान की तरफ से है, चाबहार पोर्ट की तरफ से है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरफ से है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में दिया। इसमें बेसिक काम हो चुका है, अब ज्यादा और अधिक इसमें कार्गो जाए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर, इस पर अब आगे काम होगा, पर ये एक अच्छा कदम है।
वैसे पहल, क्योंकि ये ऐसे वक्त हो रहा है जबकि यूक्रेन की और रूस के बीच में जो चल रही है लगातार लड़ाई 1 साल से ऊपर हो गई है, और समरकंद में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका पूरे विश्व में रहा कि भाई दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ऐसे में काफी बात उठी कि जो समस्या है पूरे विश्व की, खासकर इस SCO के भी, खाना 3 F के ऊपर कहा था, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और जो फर्टिलाइजर जो हमारा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि ये सभी को इफेक्ट कर रहे हैं, और दो रशिया इसके बीच में बैठा हुआ है, और पुतिन साहब का जो स्टेटमेंट था वो तो जैसे उन्होंने कहा भाई रशिया तो उसके सैंक्शन के खिलाफ लड़ रहा है और जो प्रोवोकेशन है उसके खिलाफ भी खड़ा है, तो किस तरह से इसको देखा जाए।
मैं समझता हूँ कि विश्व में सब देशों का दबाव रूस के और यूक्रेन दोनों के ऊपर पड़ना चाहिए कि आप किसी न किसी तरह इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर इस पर बहुत ही खराब असर पड़ रहा है, और ग्लोबल साउथ, अभी देखिए ये फूड का जो एक्सपोर्ट यूक्रेन से होता है ब्लैक सी के माध्यम से, उसमें वो शायद 15 जुलाई को वो एग्रीमेंट जो कराया था यूनाइटेड नेशन और टर्की ने, वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह एक नैतिक दबाव रशिया के ऊपर डाला जा सकता है। और यहाँ मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया है, तो जितने मध्य एशिया के देश है वो उससे बहुत चिंतित है, क्योंकि 1990 से पहले तो वो सब सोवियत यूनियन के पार्ट थे। तो SCO का जो एक सामूहिक संदेश, चाहे वो वर्बली कहा गया हो, वो राष्ट्रपति पुतिन को यही होगा कि आप यूक्रेन की समस्या को सुलझाइए और इसको और आगे अब नहीं बढ़ाइए।
तो अब से लेकर अगले कजाकिस्तान के दौरे के बाद जब देखेगा तो आगे SCO कौन सा रूप अख्तियार करेगा, हम सबकी नजर रहेगी। पायल साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख बिंदुओं और महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक स्कंद रंजन दयाल और पत्रकार KV प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।